हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सुनैना थोड़ी घबराई हुई आदित्य के स्टडी रूम में पहुंची। उसे नहीं पता था कि आदित्य उसकी बात सुनेगा भी या नहीं, या उसके वहां जाने पर वो कैसा प्रतिक्रिया करेगा। सुनैना आदित्य को बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी वजह से किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। इसलिए वो चाहती थी कि आदित्य अपनी चोट डॉक्टर को दिखाए और उसकी चोट ज्यादा ना हो। वहां स्टडी रूम में अंधेरा था। सुनैना को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। वो दीवार छूते हुए स्विच बोर्ड ढूंढने लगी। कुछ देर में उसका हाथ स्विच बोर्ड पर पड़ा और उसने सारे स्विच ऑन कर दिए। उसे नहीं पता था कि लाइट का स्विच कौन सा है। जैसे ही लाइट के स्विच पर उसका हाथ पड़ा, लाइट ऑन होते ही पूरे कमरे में रोशनी हो गई। नैना ने देखा कि सामने रखे बड़े काउच पर आदित्य आधा लेटा हुआ बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि वो सो रहा है या जाग रहा है। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी, वो आधी खाली थी। शराब की बोतल देखकर सुनैना को बहुत गुस्सा आया। उसका मन हुआ कि तुरंत कमरे से बाहर चली जाए, आदित्य को उसके हाल पर छोड़कर। उसे शराब और शराब पीने वालों से बहुत नफरत थी। आदित्य से तो वैसे भी अभी कोई रिश्ता नहीं था। भले ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं था अभी तक उन दोनों में। क्या है ये आदमी भी, इतनी ड्रिंक क्यों करता है? होश में रहने से दिक्कत है क्या इसे, जो हर वक्त नशे में ही रहता है ये? ऐसे ही रहना था इसे तो फिर शादी क्यों की इसने मुझसे? कोई तो रीजन होगा। और इतना जाना पहचाना सा क्यों लगता है मुझे? इसका चेहरा देखकर खो जाती हूँ मैं हमेशा ही। चाहकर भी नफरत नहीं कर पा रही हूँ जितना कि मुझे शराब और शराबियों से प्रॉब्लम है। आदित्य की तरफ बढ़ते हुए सुनैना ये सब सोच ही रही थी, लेकिन उसका ध्यान आदित्य के चेहरे पर इतना ज्यादा था कि उसने नीचे ध्यान ही नहीं दिया। जमीन पर आदित्य का पैर आगे फैला हुआ था और सुनैना का पैर भी उसमें फंस गया। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन संभल नहीं पाई और वो लड़खड़ाकर आदित्य के ऊपर गिर गई। ओ गॉड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने भी ड्रिंक कर रखी है क्या? ठीक से चल भी नहीं सकती, सीधा मेरे ऊपर ही आ गिरी। क्या कर क्या रही हो? सुनैना के ऊपर गिरने पर आदित्य अपनी आंखें मलता हुआ सुनैना की तरफ देखता हुआ बोला, तुम्हारी गलती है सारी। इस तरह से कौन बैठता है और क्यों परेशान करते हो? अपने उस असिस्टेंट मैनेजर सेक्रेटरी जो भी है वो तुम्हारा, बेचारा कब से परेशान है तुम्हारे लिए। सुनैना उसी तरह से आदित्य के ऊपर लेटी हुई बोलने लगी। आदित्य की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थीं, जो कि काफी लाल थीं। जैसे ही उसने पलटकर सुनैना की तरफ देखा, सुनैना का चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब था। आदित्य तो जैसे बाकी सब भूल गया और सुनैना के चेहरे पर आते हुए उसके बाल अपने हाथों से पीछे करने लगा, जो उसके चेहरे पर आकर उसकी खूबसूरती को छिपा रहे थे। वो परेशान है मेरे लिए? आदित्य ने सुनैना के बाल उसके चेहरे से हटाते हुए उसकी आंखों में देखकर पूछा। मैं भला क्यों परेशान होंगी तुम्हारे लिए? मुझे तो बस वो चोट, तुम्हें मेरी वजह से, आई एम सॉरी। आदित्य के इस तरह अपनी तरफ देखने पर सुनैना को पता नहीं क्या हो गया। वो इतनी नर्वस हो गई और उसी तरह हकलाते हुए सारे शब्दों को जोड़ जोड़ कर बोलते हुए आदित्य से कहती है, ठीक हूँ मैं, तुम्हें इतने गिल्ट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य उसकी बात पर एकदम सीरियस होते हुए बोला। सुनैना भी उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी। वेट, बोलते हुए आदित्य अपनी जगह से थोड़ा साइड होकर सीधे सोफे पर बैठता है और सुनैना के हाथों को पकड़कर उसे भी उसी तरह से उठने में मदद करता है। उसी वक्त दरवाजे पर नॉक करके रवि बोलता है, मैम वो डॉक्टर आ गए हैं। हाँ, उन्हें मेरे रूम में भेजो, मैं आती हूँ, सुनैना रवि से बोलती है। रवि उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। क्या डॉक्टर? डॉक्टर को किसने बुलाया? सुनैना और रवि की बातचीत सुनकर आदित्य सुनैना से पूछता है, मैंने बुलाया है, चलो चुपचाप और बैंडेज करवाओ अपनी चोट का, नहीं तो बढ़ जाएगी तो बाद में मुझे ही ब्लेम करोगे। अभी तो बोल रहे हो कि इतना गिल्ट मत लो। सुनैना सोफे से उठकर खड़े होते हुए आदित्य की तरफ देखकर बोलती है, मैंने तुमसे कहा ना मैं ठीक हूँ, समझ में नहीं आती है क्या तुम्हें एक बार की बात? मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना। आदित्य दूसरी तरफ चेहरा करते हुए थोड़े गुस्से में बोला, ठीक नहीं हो तुम, इसीलिए तो इस तरह की बातें कर रहे हो। चलो डॉक्टर को देखने दो, कहीं सिर पर ज्यादा गहरी चोट तो नहीं है। आदित्य की इस तरह की हरकतें देखकर सुनैना ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे से उठाते हुए कहा। आदित्य को उसके इस तरह से हाथ पकड़कर उठाने की उम्मीद नहीं थी। सुनैना भले ही आदित्य को उठा नहीं सकती थी, लेकिन हाथ पकड़कर वो बार बार उसे उठने और अपने साथ चलने के लिए बोल रही थी। आखिरकार आदित्य बेमन से ही सही, लेकिन उस जगह से उठा और सुनैना के साथ ही स्टडी रूम से बाहर आ गया। बेडरूम में डॉक्टर और रवि पहले से ही मौजूद थे और उसका इंतजार कर रहे थे। ये चोट कैसे लगी आपको? डॉक्टर ने आदित्य के सर की चोट का चेकअप करते हुए उससे पूछा। आदित्य ने एक नज़र उठाकर सुनैना की तरफ देखा और फिर डॉक्टर की बात का जवाब देते हुए बोला, इतनी भी नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ डॉक्टर। जब आपको यही नहीं पता कि चोट आपको लगी कैसे, तो फिर आप इतनी लापरवाही से ये कैसे बोल रहे हैं कि ज्यादा नहीं लगी आपको? डॉक्टर आप हैं या मैं? आदित्य की बात पर डॉक्टर एकदम सीरियस होते हुए बोले। रवि उनकी बात सुनकर आगे आया और डॉक्टर से पूछते हुए बोला, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना डॉक्टर? आप मुझे बता दीजिए, मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन मैं देख लूँगा। क्रमशः